آئیے تفسیر کی طرف. سورۃ یونس آیت نمبر 1-20. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. الف لام را حروف مقطعات ہیں. اس سے پہلے حروف مقطعات جو آتے تھے ہم ان میں دیکھتے تھے کہ حروف مقطعات ایز ایک آیت آ رہے ہیں, اس کے بعد آیت ختم ہو جاتی تھی جیسے الف لام میم ہے, لیکن یہاں پہ آیت آگے چل رہی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتایا آیات کی ترتیب کہ یہاں پہ آیت مکمل ہوگی, اسی طرح سے آیتوں کو رکھا گیا اور اسی طرح ان کا اختتام ہوتا ہے. حروف مقطعات کا معنی کیا ہے آپ مختلف تفاسیر میں دیکھیں گے, بعض معنی بتائے گئے ہیں, اس کا یہ معنی ہے یہ معنی ہے, لیکن چونکہ یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں کوئی بھی بات ان میں حتمی نہیں ہے, کوئی بھی بات ان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ اس کا معنی ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں بتایا اس کا معنی تو ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ ہم اس کی زیادہ کھوج تحقیق کریں. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیات ہیں الکتاب کی. الکتاب یعنی خاص کتاب, کون سی؟ قرآن کی. یہ آیات ہیں قرآن کی, اور وہ کیسی کتاب ہے قرآن؟ الحکیم, حکمت والی. الحکیم میں محکم بھی مراد ہے یعنی مضبوط, یعنی یہ کتاب مضبوط ہے, اس میں جو احکام ہے وہ مضبوط ہیں. اور حاکم کے معنوں میں بھی ہے حکیم, فاعل کے وزن پہ اگر اس کو لے تو حاکم کے معنوں میں, یعنی اختلافات کا جو فیصلہ ہے نا وہ حکمت کے ساتھ کرتی ہے, یہ حاکم ہے, جتنے اختلاف ہوں گے ان کا فیصلہ کرے گی. اب یہ حکیم کس کی صفت ہے؟ کتاب کی, یعنی یہ کتاب ہے یعنی یہ قرآن جس کی یہ آیتیں, یہ قرآن کیسا ہے؟ الحکیم, حکمت والا. اور حکیم وہ بھی ہوتا ہے جو لوگوں کا مزاج سمجھ کے اس کے مطابق بات کرتا ہے. بہت گہری بات ہے, حکیم کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کا مزاج سمجھ کے اس کے مطابق بات کرتا ہے. تو یعنی یہ کتاب کیسی ہے کہ یہ لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کو ایڈریس کرتی ہے. سبحان اللہ. تو جس زمانے میں اس وحی پہ اللہ کے کلام کے اوپر باتیں بنائی جا رہی تھی, شک کیا جا رہا تھا, اس وقت ان کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ چاہے تمہیں کچھ بھی لگے, چاہے تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے, چاہے تم اس کو کچھ سمجھو یا نہیں, لیکن یہ کتاب وہ ہے جو الحکیم ہے, اس کتاب میں حکمت ہے. اب اس کی حکمتیں ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو سمجھ نہ آتی, ہمیں کئی چیزیں, ہماری تو عقل چھوٹی ہے, ہمیں کئی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں کوئی وزڈم نہیں, کوئی حکمت نہیں. ہمیں تو جو سمجھ آتی ہے نا اس کو ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت حکمت بات ہے, باقی جو ہماری عقل سے گزر جائیں تو وہ ہمیں شاید اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی ہمارے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کی صفت فرما دی نا کہ یہ الحکیم ہے, تو حکمت سے بھری ہوئی ہے یہ کتاب, وزڈم ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں. اکانا للناس عجبا, کیا لوگوں کے لیے عجیب بات ہے؟ اس زمانے میں لوگوں کے لیے ایک بات بہت عجیب تھی, اور وہ کون سی بات تھی؟ بتایا گیا, لوگوں سے کہا گیا, کیا تمہارے لیے یہ بات عجیب ہے؟ کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہے؟ کیا ان اوحینا الى رجل منهم, کہ ہم نے وحی کی ایک شخص کی طرف ان میں سے, ایک آدمی کی طرف وحی کیوں ہو گئی؟ کیا یہ ان کے لیے عجیب بات ہے؟ ان کو بہت اچمبی بات لگتی ہے, یہ کیسے ہو گیا ایک انسان کے اوپر وحی؟ ان انذر الناس, کہ وہ انسان خبردار کرے لوگوں کو, وبشر الذین آمنوا, اور وہ بشارت دے ایمان والوں کو. یہ ان کو عجیب بات لگتی ہے کہ ایک انسان کھڑا ہو کے انذار کرنے لگے. انذار کیا چیز ہوتی ہے؟ انذار کے جیسے ہم خبردار کرنا یہ تو کہتے ہیں, خبردار کس چیز سے؟ بات یہ ہے چونکہ ایک دائی کا یہ کام ہوتا ہے, رسولوں نے یہ کام کیا انذار کا, کہ آپ کو اس کا ایک مین پوائنٹ میں بتا دیتی ہوں. اب ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے انتظار کرتے ہیں, ڈفرینٹ ان کی ٹونز اور ڈفرینٹ ان کا انداز ہو سکتا ہے, لیکن میسج جو ہے نا انتظار کا وہ سیم ہے سب کا. اور وہ کیا ہے کہ یہ زندگی جو ملی ہے یہ سب کچھ نہیں ہے, اس کے بعد ایک اور زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی کے یہ جو دنیا کی زندگی, اس کے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں ملے گا, اس زندگی میں ملے گا. پھر وہاں یا تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے. تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے تمہارے آج کے عمل پہ. تم اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بچا لو, اس کو اچھا بنا لو. اب اسی میسج کو نا ڈفرینٹ طریقوں سے لوگ بتاتے ہیں, اگر اسی کو انذار کہتے ہیں. تو رسول کا کام ہی کیا ہوتا تھا کہ وہ انذار کرے, لوگوں کو اصلاح کی طرف بلائے, کہ وہ اس زندگی کی اصلاح کر لیں تاکہ وہ آخرت کے عذابوں سے بچ جائیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہم غلط ترجمہ کرتے ہیں نا, ڈرا دو. کیوں یہ ڈرا دو گا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں جو چیز سب سے زیادہ ایک محرک بنتی ہے نا انسان کو عمل کے لیے, جو چیز موٹیویٹ کرتی ہے, جو چیز اس کو موبلائز کرتی ہے عمل کے لیے, وہ یا تو لالچ ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے. لالچ کی تو ایک لمٹ ہوتی ہے, انسان کو آپ جتنا بھی لالچ دیں وہ ایک لمٹ تک ہی کچھ کام کرتا ہے, اس کے بعد وہ کہتا کہ نہیں بس. لیکن جو خوف ہوتا ہے نا وہ انسان کو کہیں پھر رکنے نہیں دیتا, خوف انسان کو دوڑاتا ہے. تو سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ جو خوف ہوتا ہے وہ زیادہ سٹرونگ ایک ایسی چیز ہے, ایموشن یا کیا, جو انسان سے عمل کراتا ہے. اس لیے انذار کا لفظ میں ڈرانے کا زیادہ کہا جاتا ہے, کہ ڈرا دیتے ہیں لوگوں کو. پر یہ وہ ڈرانا نہیں ہے جیسے شیر سے کسی سانپ سے ڈرایا جائے, یہ ڈرانا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤ, مجھ سے خبردار کیا گیا اس آگ سے. انذر الناس کی خبردار کرو لوگوں کو, وبشر الذین آمنوا, اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لے کر. تو لوگوں کے لیے نا اس زمانے میں کون سی چیز تھی ایسی کہ جو ان کو بڑی عجیب لگتی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ چیز تھی کہ انسان کیسے رسول بن کے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس تعجب کو نا, بہت ساری قرآن میں آیتیں آتی ہیں جس نے اس تعجب کو ایڈریس کیا ہے کہ اتنا تمہیں اس پہ سرپرائز ہونے والی کیا بات ہے, یہ کون سی اتنی عجیب سی بات ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. سورہ نام میں جیسے آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو اسے مرد ہی بناتے اور ان پہ پھر وہی شبہ ڈال دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیت 95 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ اگر زمین میں رہنے بسنے والے فرشتے ہوتے جو اس میں اطمینان سے چلنے والے ہوتے تو ہم ضرور ان کے اوپر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتے. یعنی دیکھو تو صحیح کہ جو رسول بھی اسی جنس میں سے آئے گا, جو وہ قوم ہوگی, جو وہ لوگ ہوں گے. اگر فرشتے زمین کے اوپر بستے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا, اگر انسان بستے ہیں تو انسانوں کو ہی رسول بنا کے بھیجے گا نا. اور آج سے پہلے بھی انسان ہی رسول آتے رہے ہیں, فرشتے رسول نہیں آتے رہے, لیکن ان کو بڑا اس بات کے اوپر عجیب سا لگتا تھا کیسے ایک رسول انسان ہو سکتا. اور یہ جو بات ہے یہ آج بھی اسی طرح لوگ تعجب کرتے ہیں, بس تھوڑی سی ڈائریکشن چینج ہو گئی اس بات کی. پہلے کہتے تھے کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے, آج یہ کہتے ہیں رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے. رسول تو انسان ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو ہے ہی نور, وہ تو انسان ہی نہیں. بات ایک ہی ہے, اس وقت بھی تعجب کرتے تھے آج بھی تعجب کرتے ہیں. اور اس دوسرا ان کو تعجب یہ ہوتا تھا کہ بھائی اگر رسول آنا ہی تھا تو کوئی بڑا آدمی رسول مکہ یا طائف کا کوئی سردار رسول بنتا, ایک یتیم لڑکا और जो फाइनेंशियली भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है वो रसूल बन के आया। नहीं, जब इंसानों के मयार और इंसानों के तोलने के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सिर्फ माल बन जाए तो फिर वो इसी किस्म के इतराजात करते हैं। तो फरमाया अख्यान अलिना के आजमन अन अवहीना इला रजुलिन मिन्हु, कि हमने एक इंसान को रसूल कैसे बना दिया, उसके ऊपर वही कैसे भेज दी, अन अंधेर नाश की वो खबरदार करे लोगों को, ये कि खबरदार करो लोगों को, ये बात उनको अजीब लगती है कि इंसान को कह दिया गया कि तुम खबरदार करो, और दूसरा कि वो इंसान बशारत दे उन लोगों को जो ईमान लाए, अन्ना लहुम कदम सिदकिन, कि उनके लिए मर्तबा है सच्चाई का इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास। अब देख लें इंजार किसके लिए, अन्नास के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, लेकिन बशारत तमाम इंसानियत के लिए नहीं है। यानी आप जिनसे मुखातिब हैं, रसूल जिनसे मुखातिब हैं, सब के लिए एक ही बात नहीं है, सब इंसानों के लिए इंतजार तो है, लेकिन खुशखबरी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो ईमान लेकर आए। और क्या खुशखबरी, अन्ना लहुम कदम सिदकिन, कि उनके लिए है मर्तबा सच्चाई का, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास है ये सच्चाई का मर्तबा। इसका माना क्या है, इसके माने में कदम सिदकिन जो है ना, इसकी बहुत सारी तफसीरें की गई, जैसे कि इब्ने अब्बास ने फरमाया कि इसके मतलब है मंजिल सिदक, यानी बेहतरीन मुकाम उनको मिलेगा, इनको खुशखबरी दे दे जो ईमान वाले हैं कि उनको उनके रब के पास बहुत अच्छा मकाम मिलने वाला है। कतादा कहते हैं कि इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिफात करना है मुसलमानों के लिए, कि यानी अन्ना लहुम कदम सिदकिन इंदरामी, यानी बेशक उनके लिए है कदम सिदकिन, यानी शिफात होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के यहाँ जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि मैं हौज पे तुम्हारा पेशरो और मुकद्दम होऊंगा, यानी मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करेंगे लोगों का, वहाँ पे उनके लीडर होंगे। बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत है। तो ये भी हो सकता है। और इसी तरह नेक आमाल का जो अजर है उसको भी कहा गया कि वो भी कदमा सिदकिन है, यानी नेक आमाल का अजर अल्लाह ताला फरमा रहे कि इनको बशारत दे दे कि इनके लिए इनके रब के पास इनकी नेकियों का अजर मौजूद है, अल्लाह ताला ने रखा हुआ। और फिर बुजुर्गी बड़ाई और बुलंद मर्तबा ये सब भी इसमें आते हैं कदमा सिदकिन के अंदर, कि अल्लाह ताला ने इनके लिए वहाँ पर कितने आला मरातब रखे हुए हैं, क्योंकि कदम है ना आगे आगे बढ़ने के लिए आता है, तो उसके लिए। इसी तरह ये भी है कि जो बुलंद मर्तबा जो इनको मिलने वाला है उनके रब के पास, ये भी इनको खुशखबरी दे दे कि वो यकीनी है, यानी वो होगा ऐसा, ये एक कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत यानी मुक्कम बात है, यकीनी बात है। और वो कैसा मर्तबा होगा, वो बाकी रहने वाला होगा, लाजवाल होगा, दुनिया के जिस तरह ओहदे होते हैं ना, कि कोई आपने अच्छा काम किया या आपका अच्छा रिजल्ट आया तो आपको एक अच्छी प्रमोशन मिल गई, एक अच्छा बड़ा ओहदा मिल गया, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो ओहदा छीन लिया जाता है, या इंसान दुनिया से ही चला जाता है तो वो ओहदा उससे छिन जाता है। तो मौत के बाद तो दुनिया का हर ओहदा और हर मनसब और दौलत और नेमत सब से इंसान खाली हाथ हो जाता है। तो ये तो सिदक नहीं है, ये तो कदम सिदक नहीं है, ये तो ऐसा मर्तबा नहीं है सच्चाई वाला। वो वाला सच्चाई वाला मर्तबा होगा जो अल्लाह के यहाँ मिलेगा, जो लाजवाल होगा, हमेशा के लिए होगा, मुकम्मल होगा, और जो यकीनी मिलेगा, यकीनी बात है, इन दरबिहिम, उनके रब के पास। जो चीज मोमिन के दिल को कैच करती है ना, वो यही बात है, इन दरबिहिम, रब के पास। इस ख्याल से इंसान का जी खुश हो जाता है कि हाय रब के पास कैसे बुलंद मर्तबे मुझे मिलेंगे। तो कितनी अच्छी खुशखबरी है उनके लिए, आप दूसरों को वो खुशखबरी दे दें और इनको ये बता दें कि इनके लिए इज्जत के मकामात हैं। तो सोचने फिर, लेकिन जिन कदमों में लर्जिश हो जो कदम कपकपाने लगे रास्ते में, तो वो तो फिर मर्तबों तक, आला मर्तबों तक नहीं पहुंच सकते। तो इसमें इस्तकामत भी चाहिए। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि एक दाई जो लोगों को दावत देता है ना, उसका उसको किन पॉइंट्स को जहन में रखना है। इंजार सब लोगों के लिए और बशारत ईमान वालों के लिए, इसी इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर उसकी सारी तबलीग होगी। इसी के लिए रसूल भेजे गए। قال الكافرون ان هذا لساحر مبين, कहा काफिरों ने कि ये तो खुल्लम खुल्ला जादूगर है। क्यों कहते थे वो जादूगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात थी, जो कुरान था, वो उनके दिलों पर ऐसे असर करता था, ऐसे दिलों को ग्रिप कर लेता था कि वो कहते थे कि ये तो जादूगर है, इसने तो बस जादू कर दिया। हालांकि देखिए, जादूगर जो होता है, जादूगर और पैगंबर में बहुत फर्क है। जादूगरी एक पेशा है, एक प्रोफेशन है। पैगंबरी एक प्रोफेशन नहीं है, एक पेशा नहीं। जादूगर पैसों के लिए, माल के लिए, यानी कुछ फीस लेके, कुछ आपसे चार्ज करके फिर वो जादू के करतब दिखाता है। नबी कुछ चार्ज नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पैगाम देता है। जादूगर की जो बात होती है उसके अंदर कोई इस्लाही बात नहीं होती, कोई आपको जिंदगी का प्रोग्राम नहीं दे रहा, कोई आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई बातें नहीं बताता। उसकी तो बस शोभदाबाजियां ही होती है, करतब होते हैं। जबकि नबी की बात ऐसी होती है कि जिस पे अमल करके इंसान की सारी जिंदगी समर जाती है। तो जैसे नबी इखलाक और किरदार और इसकी कैरेक्टर बिल्डिंग की ये जो भी एजेंडा देता है, वो जादूगर कहाँ दे सकता है? तो इधर की उधर कलाबे मिलाता रहता है जादूगर, तो इधर की उधर चीजें मिलाता है और कभी ये शोभदा दिखा दिया, कभी रुमाल निकाल के उसको कबूतर बना दिया, कभी कुछ कर दिया। तो ये तो शोभदे जादूगरों का काम होता है, पैगंबर ऐसे काम नहीं किया करता। तो ये जादूगर और पैगंबर का फर्क है। अगर इस बात में अगर आप देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनडायरेक्टली एक कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए कि जादू जो होता है वो इंसान, ये जादू उस चीज को कहता है कि मेरी अकल से बियॉन्ड है ये चीज ना, मेरी अकल नहीं समझ पा रही। इसी तरह जो पैगंबर की बात है वो वाकई इस दुनिया की बात नहीं है, वो यहाँ से बियॉन्ड एक आलम की बातें हैं जो इंसान नहीं बना के ला सकता। सुपर नेचुरल एक बातें, एक चीज है ये कलाम। और ये भी कि वाकई उनके दिलों पे असर होता था, इसीलिए जादूगर कह रहे थे वाकई दिलों पे असर करने वाली ये कलाम है। अब आगे बताया गया रब का तारुफ, वो पैगाम जो नबी लोगों को दिया करते थे, क्या कि तुम्हारा रब कौन है। ये है नबी की तबलीग के पॉइंट्स। हम वो जब बोलते हैं ना कि हमें तबलीग नहीं करनी आती, हम कैसे बताएं लोगों को, किस तरह करें, तो इतनी आप देखेंगे सिंपल बातें हैं जो पैगंबरों की हैं, कोई उसमें लगी लिपटी नहीं, कोई उसमें ऐसी सिंपल सिंपल बातें जो हर एक को समझ आ जाने वाली है। इन्ना रब्बकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है। तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह है। कौन अल्लाह? अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द, जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को। कितना सिंपल वे में तारुफ है रब का कि देखो, नजर उठाओ ऊपर को, ये जो आसमान है ना, इनको पैदा करने वाला जो है वो है तुम्हारा रब। और जो ये जमीन की तरफ नीचे देखो, तो जो जमीन को पैदा करने वाला वो है तुम्हारा रब। और कब, कितनी देर में पैदा किया? फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में पैदा किया। अब ये कौन से 6 दिन है? हमारे 6 दिन या अल्लाह ताला के पास कोई 6 दिन है? वल्लाहु आलम के ये कौन से हैं, लेकिन ज्यादा यही कहा जाता है कि ये जमीन वाले 6 दिन नहीं, इसलिए कि जमीन तो बनी ही नहीं थी। जब जमीन बनी तो फिर ही सूरज और इसके गुरूब और तुलू होने से ही यौम बनता है ना, दिन बनता है। तो जब अभी जमीन ही नहीं बनी, अभी सूरज ही नहीं बना, तो फिर कौन से यौम हो गए। तो ये अल्लाह के हाँ के कोई दिन है जिनको हम नहीं समझ सकते, लेकिन इससे हमें ये जरूर पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप काम हुआ, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम हुआ, और इस सारे काम में उस बनाने वाले को कोई थकावट छुई भी नहीं, कोई थकावट नहीं हुई। जब ये कहते हैं ना, छह दिन में खुदा ने आसमानों जमीनों को बनाया और फिर सातवें दिन उसे रेस्ट किया, तो वो हॉलीडे है, वो लीडे, यानी अब उस दिन उसने आराम किया। ऐसा नहीं है, हम कहते हैं कि छह दिनों में उसने पैदा किया, लेकिन उसको कोई थकावट का जरा बराबर भी कोई शायबा भी नहीं। और यहाँ से भी पता चलता है एक और बात कि देखिए, जब कोई चीज बड़ी एतमाम के साथ बनाई जाए, यहाँ से एतमाम का भी पता चलता है ना, बड़ी एतमाम के साथ बनाई जाए किसी के लिए, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी एक ऑनर की बात होती है। मसलन आप मेरे घर आए तो मैं आपको कहूँ कि आपको पता है कि मैं दो दिन से आपके लिए तैयारी कर रही हूँ कि आप आ रही हैं, वर्सेस मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है आप आइए, मैं अभी कुछ देख के आपको सामने रख दूँ। और अगर मैं कहूँ दो दिन से मैं आपके लिए मुसलसल तैयारी कर रही हूँ, तो ये आपके लिए कितना बड़ा ऑनर होगा ना। अल्लाह ताला फरमा रहा है, मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया आसमानों को और जमीन को, वो और छह दिन में बहुत स्टेप बाय स्टेप, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़ी प्लानिंग के साथ इस सब कुछ को बनाया। अब आप बताएं कि इसमें इंसान के लिए कितनी बड़ी एक ऑनर की बात है, कि इसके लिए अल्लाह ताला ने कितना इत्तमाम किया। और फिर ऑर्गेनाइज तरीके से बनाने में क्या है, यानी इस सब का कोई मकसद है। बेमकसद चीज आप इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, इतने तमाम के साथ, इतने स्टेप बाय स्टेप ऐसे नहीं करते जो चीज बेमकसद होती है, मतलब इसका कोई मकसद भी होगा। तो मस्तवा आलल अर्श, फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पर। यहाँ से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला मुस्तवी कहाँ है, आलल अर्श। ये जो कहते हैं कि हर जगह, इधर भी अल्लाह ताला फिजिकली मौजूद है, अल्लाह ताला माफ फरमाए ऐसी अकीदे से कि यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला कहाँ है, अर्श पे, ठीक है। हाँ, वो अपनी सिफात के लिहाज से हर जगह मौजूद है, लेकिन अपनी जात के लिहाज से हर जगह मौजूद नहीं है, ठीक है। ये बात अपने अकीदे को इस तरह से दुरुस्त रखना चाहिए। तो सुमस्तवा अलल अर्श, फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पे, इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, ये हमारा काम नहीं है कि हम इसको इसकी कुछ डिटेल बता सकें, या हमारी अकल भी इतनी नहीं है कि हम इसकी कुछ इंटरप्रिटेशन इस तरह से अपने जहन के अंदर ला सकें। वल्लाहु आलम, यानी बस हमें ये पता चलना चाहिए कि अर्श पे वो मुतमक्किन हो गया, छह दिन में उसने आसमान और जमीन बनाया, अर्श पे मुतमक्किन हुआ, और उसके बाद इन सब को ऐसे ही बना के छोड़ नहीं दिया, बल्कि युदब्बिरुल अम्र, वो तदबीर करता है तमाम मामलात की, अर्श से वो सब मामलात की तदबीर कर रहा है, सब मामलात की, यानी प्लानिंग, उनकी जो भी कैलकुलेशन है, उनकी जो भी डिटेल्स हैं, उनके जो भी इंतजाम है, किस तरह चलाना है किस चीज को और किस तरह क्या होना है, ये सब, ये जो सारा निजाम चल रहा है, ये ऐसे खुद ब खुद नहीं चल रहा। देखिये, सूरज बना दिया, सूरज को बना के उधर फेंका, चांद बनाया उधर बना के फेंका, तो वो तो फिर वो अपनी मर्जियों से ही चलते रहते थे, बस उनको हुक्म दे दिया तो चलते जाओ तो चलते। नहीं, अल्लाह ताला ने उनकी निगरानी भी करता है, अल्लाह ताला हर चीज के कोई हिफाजत भी करने वाला है, अल्लाह ताला ने हर चीज को थामा भी हुआ। तो ये जो जितनी आप चीजें काम होते देख रहे हैं कायनात में, जमीन में या आसमानों में, वो अल्लाह ताला की प्लानिंग है। और जो हर चीज जैसे बनी हुई है ना, जो उसका साइज, जो उसका शेप, जो उसका कलर, तो वो भी अल्लाह ताला ही की प्लानिंग है कि इसका ये साइज होना चाहिए, ये इसकी शेप होनी चाहिए, ये इसकी स्पीड होनी चाहिए, ये इसका रंग होना चाहिए, ये इसका ऑर्बिट होना चाहिए, इसको यहाँ पे रखना है और इसको यहाँ पे रखना है, और हर एक के सर्वाइवल के लिए जो इंतजाम आते हैं वो भी तदबीर वो कर रहा है। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया, ये दो बातें हो गई ना, पहली बात वो जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को छह दिनों में, پھر عرش پہ متمکن ہوا. دوسری بات کیا ہوئی, یدبر الامر, تدبیر بھی کرتا ہے کاموں کی سارے معاملات کی. تیسری بات کیا ہے, ما من شفیع, نہیں کوئی بھی سفارشی, الا من بعد اذن, یہ اللہ کون ہے جس کے آگے کوئی سفارشی نہیں ہے, کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کے آگے بول سکے, الا من بعد اذنی, سوائے اس کے کہ جس کو وہ اذن دے دے, اس اجازت ملنے کے بعد کوئی بول سکتا ہے, اس کی اجازت کے بغیر نہیں کوئی اس کے سامنے سفارش یا کوئی بات کر سکتا ہے. اس دن تو بات کرنے کی بھی لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن, نہیں وہ بول سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے تو وہ بول سکے گا, اس دن تو بول ہی نہیں کوئی سکتا, شفا تو بات کی بات ہے. اتنی عظمت اور اس کی ہیبت اتنی ہے کوئی نہیں بول پائے گا, مگر جس کو وہ اجازت دے دے تب کوئی بول سکے گا. تو جب حشر میں بھی لوگ کھڑے ہوں گے نا, بالکل خاموشی ہوگی, بالکل خاموشی, صرف سانس کی آواز آ رہی ہوگی. یہ جو ہماری باتیں ہوتی نا یہاں پہ, میں اللہ کو یہ کہہ دوں گی, میں وہ کہہ دوں گی, میں پتہ نہیں کیا کہہ دوں گی, جیسے میں نے جاتے ہی وہاں پہ جو ہے نا اپنا پورا کیس کھول کے بیٹھ جانا اور میں نے اسی طرح باتیں کر رہا ہوں نا جیسے میں یہاں پہ کرتی ہوں, ایسا نہیں ہے. وہ تو اتنا دن مشکل ہے, ایسا عظیم دن اس کو کہا گیا, وہ دن اتنی ہیبت والا ہوگا, اور جب اللہ تعالیٰ کا عرش لایا جائے گا اور اس کے سامنے انسان کھڑا ہوگا تو کسی کو ایک لفظ بولنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی. اچھا, شفاعت کا شفعون یا شفیع, یہ کہاں سے لفظ آیا؟ اصل میں شفعون کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا, جوڑ دینا. تو شفاعت کا جو مطلب ہوتا ہے نا, یعنی کمزور آدمی کی مدد کے لیے کوئی بڑا آدمی ساتھ مل جائے, اس کو جوڑ دیا جائے اس کے ساتھ, سمجھے؟ جس کو ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں سفارش کرنا. اب سفارش میں ایک سفارش کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کی سفارش کی جائے. تو جو سفارش کرنے والا ہے نا اس کو شفیع کہتے ہیں, اور جس کی سفارش کی جائے اس کو مشفوع کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں بھی جیسے اس میں آج کے سبق میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کفار مکہ میں بھی شفاعت کے نا بہت ہی الٹے سیدھے کانسیپٹ تھے جو کہ ہمارے ہاں بھی آج ہو گئے, حالانکہ ہمیں قرآن و حدیث سے واضح طور پہ شفاعت کا کانسیپٹ پتا چلتا ہے کہ شفاعت کیا ہے. بعض لوگ تو بالکل ہمارے ہاں شفاعت کو بالکل اوور رول کرتے ہیں, بالکل کہتے ہیں کہ شفاعت ہے ہی نہیں, کوئی نہیں کسی شفاعت کرے گا. یہ بھی غلط ہے, اور یہ بھی غلط ہے کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے, کیسا بھی ہو, بس وہاں پہ جی ہم کوئی ہماری سفارش کر دے گا اور ہم پار ہو جائیں گے, ایسا بھی نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں نا, یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے, ان کا اتنا اثر و رسوخ ہوگا, ان کی ہر بات مانی جاتی ہوگی, تو ہم بھی کسی کو, ولی کو, کسی پیر کو, کسی نیک انسان سے بس ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں, اس کو راضی کر لیں, قیامت کے دن بس وہ جانے اور اللہ جانے, ہمیں جنت میں لے جانا اس کا کام ہے بس. اور اس غلط کانسیپٹ کی وجہ سے اتنے کبیرہ گناہ انسان کر لیتا ہے, کبیرہ گناہ, پتا ہے کیسے؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ. جیسے بعض دفعہ اچھے بھلے لوگوں کو کہتے ہوئے میں نے سنا کہ وہ دنیا کی مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیتے, اتنی یہ غلط بات ہے. مثلا کہہ دیتے ہیں دنیا میں بھی دیکھیں نا, آپ نے کسی افسر تک اگر اس کو ریچ کرنا ہو تو آپ اس کی فیکٹری کو اس کے تک جاتے ہیں, پھر وہ آگے اپنے افسر تک لے کر جاتا ہے بات کو. تو اسی طرح ہمارے یہ بھی ہیں, یہ ان کو ہم وسیلہ بناتے ہیں, یہ جو ہے نا اللہ تک ہماری بات کو پہنچاتے ہیں, کیونکہ ہم تو خود تھوڑی کر سکتے ہیں, ہم تو خود اتنے گناہگار ہیں, تو ہم تو اس لیے ان کو پکڑتے ہیں. دیکھیں اللہ کے لیے وہ مثال دینا جو انسانوں کے لیے, وہ انسان بےچارا افسر جو ہے وہ اندر کمرے میں بیٹھا, اس کو تو پتہ ہی نہیں آپ باہر کھڑے بھی ہوئے کہ نہیں, تب آپ کو اس کے پی ایم کو یا اس کے سیکٹری تک کوئی کچھ سفارش کرانی پڑتی ہے کہ بھائی جی اس تک میرا پیغام دے دیں, یہ کر دیں. لیکن یہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کہ وہ اپنے عرش پہ متمکن ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کچھ, اب یہ لے کے جائیں گے اس تک سفارش تو پھر ہی بات ہوگی. तो सबसे गलत तो कॉन्सेप्ट यहीं से हो गया। अच्छा फिर दूसरी क्या गलती इसके अंदर हम करते हैं कि हम खुद ही सोच लेते ये फला ये बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े पहुंचे हैं, बस इन्होंने हमारी शिकायत करनी। आपको क्या पता, आपको क्या पता है कि ये इतने पहुंचे हुए भी हैं कि नहीं, इनको इज्जत मिलेगा शिकायत का कि नहीं। आपने कैसे खुद ही तय कर लिया, बस देख के जाहिर को। देखिए हम जाहिर देखते हैं, आप मेरा जाहिर देख सकते हैं, आप उसके मुताबिक कोई कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने जाहिर नहीं, उसने बातिन भी देखना है, बातिन भी देखना है, और बातिन हर एक से छुपा हुआ है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला को पता है किसी के बातिन में क्या, क्या पता उस दिन क्या हालात हो, किसके साथ कौन किस हाल में हो। हम खुद ही यहाँ पे सर्टिफिकेट दे देते हैं कि फलाना अल्लाह है, बस फलाना तो बख्शा बख्शा है, बस फलाना तो ऐसा है। क्या जाने हम, क्या हमारा इतना इल्म है। मैंने आपको उसी दिन बताया था पिछली क्लास में कि हर एक इंसान उस दिन घुटनों के बल गिरा होगा जहन्नुम को देख के कहेगा नफसी नफसी अल्लाह मुझे बचा ले। उस दिन किसी ने किसी को क्या बचाना। तो ये एक तो हम खुद ही नहीं तय कर सकते, तो हम कैसे किसी को सोचने के बस ये हमें बचा लेगा, चाहे आप उसको कितना ही नेक क्यों ना देख रहे, हमें नहीं पता किसी का मर्तबा अल्लाह के यहाँ क्या है। दूसरी ये चीज इससे कैसे गुनाह कबीरा जन्म लेती है कि फिर इंसान उन लोगों के ऊपर जिनको वो समझता है ना ये मेरे शफीर हैं अल्लाह के यहाँ, बस फिर वो उनके ऊपर भरोसा करने लगता है। जो तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए, अल्लाह से तो बेपरवाह हो जाता, बस तवक्कल सारा का सारा बस इन पे। फिर वो नमाज रोजा कुरान तहज्जुद सदका खैरात कहता है ये करने की क्या जरूरत है, इसकी बजाय मैं क्यों ना जो शफी है मेरे वो खुद ही बना लिए शफी, उनके नाम की नजरो न्याज कर लूं, चढ़ावे चढ़ाऊं, मनते मान मान के उनको राजी करूं। उनको राजी करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि उन्होंने तो सिफारिश करनी, ये राजी हो गया तो अल्लाह राजी हो गया, बस इनको राजी करूंगा तो ये आगे अल्लाह के पास भी सिफारिश करेंगे। तो अगर वो फौत हो चुके हैं तो उनकी कब्रों पे जा जाके फूलों की चादरें चढ़ा रहे हैं, उर्स कर रहे हैं, धागे बांध रहे हैं, मजावरी कर रहे हैं, बस ये हमसे इस तरह खुश हो जाएंगे। ये सारी चीजें इसी वजह से तो ये पैदा हुई कि ये शिफात का अकीदा जब खराब हो जाता है ना तो फिर ये सारी मसले पैदा होते हैं इस तरह। तो फिर इंसान जिसको ऐसा समझता है उसको अपना कारसाज समझ लेता है, उसको अपना वकील समझ लेता है। हसबी अल्लाह हुआ नेमल वकील है, वो तो हम तो कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन वकील है, इन्होंने तो इनको बना लिया कि हमारे लिए यही काफी है, यही हमारे वकील है। फिर वो दुनिया के मामलों में भी फिर उन्हीं पे भरोसा करता है जिन्होंने भाई वहां पे हमारी खलासी करा देंगे, दुनिया के काम छोटे छोटे नहीं करा सकते क्या, तो दुनिया में भी करा सकते थे यही, तो यहाँ पे मुश्किल कुशा वो, हाजत रवा वो, मुसीबतें और मुश्किल दूर करने वाले वो, हमारी दुआएं फरियादें सुनने वाले वो, तो फिर वो इंसान उन्हीं से सारा करने लगता है। इसीलिए तो वो कितने ये या अली मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, फिर जिले इलाही शेख अब्दुल कादिर जिलानी अमदाद कुन अमदाद कुन या शेख अब्दुल कादिर या गौसे आजम या मोइनुद्दीन चिश्ती या बहाउल हक बेड़ा थक, ये कितनी सारी बातें बनी है। तो ये इसी वजह से, और हम इसी वजह से जब ये अकीदा रखते ना फिर हमारा ये होता है कि ये ना बस कहीं नाराज हो जाए, इनको राजी रखो, उनसे डरने लगते हैं वैसे जैसे अल्लाह से डरना चाहिए। उनकी अजमत और किबरियाई दिल में इतनी हो जाती है कि अल्लाह के लिए जैसे होनी चाहिए उसे बढ़ के इनके लिए हो जाती है। अल्लाह अकबर। तो ये चीजें इंसान को कहाँ तक पहुँचा देती है। अकीदा शिफात जो है ना इसको सही करना बहुत जरूरी है, ना तो इसको बिल्कुल डिनाइल में ले जाएं और ना ही इस तरह का अकीदा रखें कि जो ये शिर्क बन जाए या कबीरा गुना बन जाए, और अल्लाह ना करे कि शिर्क तो फिर ना माफ करे कि फिर इंसान जो ऐसे करता है वह दुनिया से चला गया, तो फिर आपको पता है ना कि शिर्क माफ नहीं होगा। तो जब हम कुरान करीम में पढ़ते हैं ना तक यौम ला तजी नफ्सुन नफ्सिन शैया वला युक्बलु मिन्हा अदलुन वला तनफऊ शफातुन, उस दिन कोई शिफात काम ही नहीं आने, तो हम बाज़ दफा ये सोच लेते हैं कि कोई शिफात होगी ही नहीं। ऐसा नहीं है, शिफात होगी मगर अकीदा सही रखें, अकीदा सही रखें अपना। ये कैसी शिफात होगी वो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला सबसे पहली बात ये, अल्लाह ताला सबका हाकिम है, उसके सामने सारी मखलूक, चाहे वो पैगंबर हो चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सब बेबस हैं, सब आजिज हैं, अल्लाह के आगे किसी का बस नहीं है। मखलूक को अल्लाह की पकड़ और सजा का खौफ होना चाहिए कि अल्लाह ताला किसी को भी पकड़ सकता है, क्योंकि फाइनल एंड टोटल अथॉरिटी उसकी है। क़यामत के दिन भी शिफात की इजाजत देना या ना देना, इसकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। किसी को बाय हिमसेल्फ शिफात करने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह शिफात कबूल करना या नहीं करना, इसकी भी अथॉरिटी ओनली अल्लाह ताला के पास है। कोई अल्लाह ताला से जबरदस्ती शिफात नहीं मनवा सकता कि बस मैंने आप शिफात कर दी, अब जरूरी आप माने इसकी शिफात, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल लिल्लाह शिफात जमीया, सूरह ज़ुमर में है कि सिफारिश जो है ना सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में, किसी के भी नहीं। तो फिर कौन बड़ी से बड़ी अल्लाह की महबूब हस्ती भी कोई हो तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं सिफारिश की जरूरत कर सकती, ना हम किसी को ये सर्टिफिकेट दे सकती, ना कोई ये कह सकता मैं जी अपने फलां उम्मती को या फलां मुरीद को या फलां को मैं तो जरूर जन्नत में ले जाऊंगा, मैं अपने फलां प्यारे को जरूर लेकर जाऊंगा। आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह अपने बाप को नहीं उस दिन सिफारिश करके बचा सकेंगे। देखा वो मैंने बताया था ना आपको, उन्होंने कहना है कि या अल्लाह मेरा बाप है, तूने कहा था मुझे नहीं रुसवा करेगा, तो अभी कितनी मेरी बेइज्जती है, मेरा बाप जहन्नुम में चला जाए, ये तो मेरी रुसवाई है ना। तो क्या उनकी शिफात मानी गई, सिफारिश मानी गई? नहीं। नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में पैगंबर है, अपने बेटे की सिफारिश में दुआ कर रहे हैं ना, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, बेटा डूब गया आंखों के सामने, कुछ कह नहीं सके। इतने इतने पैगंबरों से बड़ा किसका मर्तबा होता है, इतने बड़े मर्तबे वाले भी नहीं कुछ कर सके। तो आप मुझे बताएं कि हम छोटे छोटे लोगों को समझ लेते हैं कि भाई फलां वलीउल्लाह, फलां सालेहीन, फलां ये है, फलां कोई दर्द करता है, फलां को इतने कोई अल्लाह के यहाँ बड़े हो गए कि पैगंबरों से भी बड़ी इनकी चलेगी, फलां पीर साहब, फलां ये, उनका तो इतने हजारों उनके मुरीद हैं, और फलाने के तो उसके मिजार पे जाओ तो हर वक्त वहाँ पे रश लगा होता है, तो पता नहीं ये कितने पहुंचे हैं, तो हम इनको कहेंगे तो इन्हें हमारी आपके आगे, आपकी अल्लाह के आगे। किसी चीज में भी कोई नहीं कर सकता सिफारिश, और ना दुनिया के कामों में ना आखरत के कामों में। फिर शिफात है क्या, क्या इसका मकसद है, क्यों शिफात का रखा गया, इसको आज समझने सही से। शिफात असल में क़यामत के दिन अल्लाह ताला अंबिया को या सालेहीन को या औलिया अल्लाह हैं, इन सब के लिए एक ऑनर इनको देगा कि अल्लाह ताला की तरफ से ये उनको मतलब एक दिया जाएगा, एक मकाम या एक उनको एक अल्लाह की एक इनाम समझ लें, कि जिनको अल्लाह ताला माफ करना चाहता है, जिन गुनाहगार लोगों को अल्लाह ताला माफ करने का फैसला कर चुका है, तो बजाय इसके कि अल्लाह ताला खुद ही उनको जन्नत में ले जाए, अल्लाह ताला इन लोगों को अंबिया सालेहीन औलिया इनको ये एजाज देगा कि आप इनकी सिफारिश करें और इन्हें जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले जाए। समझे? यानी तय किसने किया, फाइनल किसने किया? अल्लाह ताला ने। और ये तो बस उनको एक ऑनर दिया जा रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुस्लिम की रिवायत में कि अंबिया भी, मलाइका भी और अहले ईमान भी उस दिन सिफारिश करेंगे। ठीक है, मुस्लिम की रिवायत है ये। कौन कौन करेगा? नबी भी करेंगे, फरिश्ते भी करेंगे, ईमान वाले भी करेंगे। और किसको मिलेगा ये इज़न, औलिया में से या उलमा में से या सालेहीन में से या शुहदा में से, किसको इज़न मिलेगा शिफात का? ये बहुत सारे उलमा होंगे ना, बहुत सारे सालेहीन, बहुत सारे लोग कहेंगे हम औलिया ना, यहाँ पे कोई आके फरिश्तों ने सर्टिफिकेट तो नहीं ना दिए हुए किसी को, आप जी औली अल्लाह, आप में से कोई आप वलीउल्लाह, तो किसको फिर मिलेगा? ये हम नहीं जानते, ये अल्लाह को पता है कि कौन वाकई अल्लाह के नजदीक वली है, कौन वाकई अल्लाह के नजदीक साले है, कौन वाकई अल्लाह के नजदीक आलिम है, कौन वाकई अल्लाह के नजदीक शहीद है। क्योंकि एक हदीस से हमें पता चलता है ना, बाज लोग जो दुनिया की नजरों में वली हैं, आलिम हैं, शहीद हैं, क्यामत के दिन मुंह के बल घसीट के जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। तो इसलिए हम डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी को। अब देखिए, अब ये शिफात के रिजल्ट में जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के नतीजे में, उन मुसलमानों में दो किस्म के लोग हैं, दो किस्म के। पहली किस्म उन लोगों की है जो जहन्नुम में दाखिल हुए बगैर ही मुख्तलिफ औकात में जन्नत में जाएंगे। अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिफात कुबरा होगी ना, ऐसी शिफात की जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे कि अल्लाह ताला इन लोगों का हिसाब किताब शुरू कर दे, लोग इतने मुश्किल के अंदर होंगे, अल्लाह इनका हिसाब किताब शुरू कर दे, वो एक बड़ी सिफारिश, एक बड़ी शिफात उनकी होगी, तो तभी हिसाब किताब शुरू होगा। अच्छा, तो पहली किस्म के लोग हैं बगैर यानी किसी उसके बगैर कोई मुश्किल में पड़े हुए, बस डिफरेंट टाइमिंग्स में जन्नत में चले जाएंगे। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद जहन्नुम से निकल के फिर जन्नत में जाएंगे। तो ये पहली किस्म के जो लोग हैं ना, जो फर्स्ट टाइप आपने लिखी है, इनकी आगे फोर और टाइप्स लिखे के जो डिफरेंट टाइमिंग्स में जन्नत में जाएंगे लेकिन जहन्नुम में दाखिल हुए बगैर चले गए, मगर इनके भी सारे एक ही दफा में नहीं जा रहे होंगे। चार किस्में इनकी। पहले खुशनसीब तो वो होंगे जो आपकी शिफात से बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। दूसरे भी, वो भी खुशनसीब है जिनका हिसाब किताब तो होगा लेकिन इनकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, तो ये भी जन्नत में चले जाएंगे। तीसरे वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बदियां बराबर हो जाएंगी, तो वो मकामे आराफ में बैठे रहेंगे, ठहरे रहेंगे। और आपको पता है सूरह आराफ में हमने पढ़ा था ना ये मकाम, तो वहां पे रहेंगे और फिर उसके बाद वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से। फिर चौथा एक और ग्रुप होगा जिनकी नेकियां बुराइयों से कम होंगी, नेकियां कम है गुनाह ज्यादा है, उनका जहन्नुम में जाना तय हो जाएगा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के नतीजे में ये लोग भी जहन्नुम से बचा लिए जाएंगे और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये डायरेक्ट जन्नत में जाने वाले कितने लोग हैं? ये चार किस्म के लोग हैं। अब ये कब कब जाएंगे जन्नत में, ये तो अल्लाह को ही पता है कब कब जाएंगे, मगर ये पता चलता है कि जितना ईमान ज्यादा होगा, जितनी नेकियां ज्यादा होंगी, उतनी जल्दी जन्नत में चले जाएंगे। जितना ईमान कम होगा, नेकियां कम होंगी, उतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात में देर से उनको मिलेगी और देर से जाएंगे। अब ये जो सेकंड टाइप मैंने आपको लिखाई थी कि ये जो जहन्नुम का अजाब भुगत के जन्नत में जाएंगे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से ही जाएंगे, लेकिन वो कब जाएंगे? इनमें कम गुना वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात जल्दी मिल जाएगी, ज्यादा गुना वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात देर से मिलेगी। ठीक है, तो शिफात का सारा डिपेंड किसके ऊपर करता है? ईमान और साले अमल। ये वो शिफात नहीं है जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कुछ ही ना करो बस इनका दामन थाम लो और ये लेके गुजर जाएंगे हमें वहां से, ऐसा नहीं है। सारी डिपेंड इस पे करता है कि आपके पास ईमान कितना, अमले साले कितना। ठीक है, शिफात होगी मगर उसी के ऊपर डिपेंड करती भी होगी। अब कुछ आमाल भी ऐसे हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का वादा भी किया गया, आपको पता है ना वो आमाल, जैसे अजान के बाद जो हम दुआ पढ़ते हैं, अजान के बाद की दुआ है, उसके बारे में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैं उसके लिए शिफात करूंगा। फिर इसी तरह जो इंसान सुबह शाम 10-10 दफा दरूद शरीफ पढ़ता है, उसके लिए भी आता है हदीस में, फिर जो तहज्जुद पढ़ता है उसके लिए भी आता है, सूरह मुल्क की जो कसरत से तिलावत करता है उसके लिए भी आता है, और सूरह बकरा और आले इमरान की जो तिलावत करता रहता है उसके लिए भी, कुरान मजीद की जो कसरत से तिलावत का इहतमाम करता है उसके लिए भी, और मदीना में क़याम के दौरान जो मुसीबतों पे सब्र करता है उसके लिए भी, और 3 दफा जन्नत का सवाल जो करता है हर दिन 3 दफा, तो उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी। इसी तरह 3 दफा जो जहन्नुम से पनाह मांगता है उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी। ये कुछ काम है जो अब हम हदीस की डिटेल में नहीं जा सकते इस वक्त, मगर इनके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि मैं ऐसे लोगों की शिफात करूंगा। तो शिफात भी क्या है, इल्ला मिन बाद इज़्नी, इसके बाद के अल्लाह का इज़्न हो। तो फिर राजी किसको करना है, उस रब्बे करीम को। वो राजी हो गया तो वो किसी ना किसी से की शिफात करा ही देगा। जब उसने फैसला कर लिया ना कि मैंने इसको माफ करना है, तो फिर कहीं से सिफारशी आ जाएगा। लेकिन अगर उसने फैसला नहीं किया, उसको राजी नहीं किया, तो फिर अब आप चाहे कहें कि मैं उम्मती हूँ, तो चाहे आप कहें कि मैं फलां की रिश्तेदार हूँ, मेरे फलां इतने पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, मैं सैयद खानदान से हूँ, चाहे कुछ भी कहें, अगर इज़न उसका ना हुआ तो कोई सिफारिश ही नहीं मिलेगा वहाँ। उन्हीं लोगों के लिए कहा गया कि इनके लिए कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ, अब ये सारा बता के कि वो कौन रब है, उसके बाद कहा गया ये है अल्लाह तुम्हारा रब, अब तुम्हें क्या चाहिए करना, क्या आप तुमसे क्या मुतालबा क्या किया जा रहा है, ये فَعْبُدُوهُ, अब तुम इबादत करो उसी की, उस रब की इबादत करो, उसको छोड़ के किसी और को इलाह ना बनाओ, किसी अदना के आगे ना झुको। खुदा के सिवा हर कोई अदना है, अगर इंसान उसके आगे झुकना चाहता है वो अदना है, और उसके सामने झुक के इंसान खुद को गिरा देता है अपने मकाम से, तो इसमें इंसान की जिल्लत है कि मखलूक के सामने झुके। तो फरमाया फाबुदू, उसकी इबादत करो, यानी उसको मानो, उसकी इबादत के अंदर क्या आ जाता है, उसकी इताअत भी आ जाती है। ये नहीं कि अल्लाह को तो मान लिया, अल्लाह की नहीं मानी तो वो नहीं फिर इबादत। तो बताया गया है अफला तज़क्करून, क्या भला कि तुम नसीहत नहीं पकड़ते, इतनी बातें सुनने के बाद भी अभी भी तुम इसी बात में पड़े हुए हो कि रब को समझ भी लिया कि कौन है वो रब, फिर भी तुम किसी और के आगे झुको, क्या तुम होश से काम नहीं लेते जबकि तुम जान भी चुके हो। इलैही मर्जिउकुम, फिर आगे और तारुफ है, इंट्रोडक्शन उस रब का, वो कौन है, उसकी तरफ लौटना है तुम सब का। तुम नहीं भी मानते तो फिर भी कहां जाओगे, नहीं उसकी इबादत करना चाहते कहां जाओगे, वापसी तो उसी की तरफ है ना, फिर क्या करोगे, उससे बच के उससे भाग के किधर जा सकते। और जमीन अन कह दिया गया, चंद एक नहीं तुम में से, सब के सब, कोई एक भी बाकी नहीं बचेगा, एक भी बाकी नहीं बचेगा। हाँ तो हम कहीं दूर दूर बैठे होंगे, एक दूसरे से कभी नहीं मिले होंगे, लेकिन एक जगह ऐसी आने वाली है जहाँ पे हम सब ने मिल जाए, सब एक जगह होंगे। तो इलैही मर्जिउकुम, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये यकीन अगर दिल में आ जाए ना, तो इंसान बेसमत नहीं चल सकता, फिर वो सीधा हो जाता है, उसकी डायरेक्शन सीधी हो जाती है, फिर लौटना उसकी तरफ है। जिसको लौटना याद रहे वो फिर अपनी जिंदगी को सुधार लेता है, और जब इंसान लौटने को भूल जाता है ना, तो फिर वो करता है कि जाहिर है उसको जब यही नहीं है कि मैंने किसी के पास वापस जाना है, तो इताअत की भी क्या जरूरत। वाद अल्लाह ही हक्का, ये अल्लाह का वादा है सच्चा कि तुम्हें उसकी तरफ लौट के जाना। अल्लाह ताला का तो वादा करना ही बहुत बड़ी बात है कि वो रब वादा कर ले, और जब कह दिया गया वाद अल्लाह ही हक्कन, ये उसका वादा है सच्चा, इसके बावजूद कोई मुसलमान अगर उठ के कहता है ना ये कि बस ये दुनिया के अंदर ही देखें, ये जो आपको मिल जाती हैं चीजें यही ये जन्नत है और जो यहाँ पे जो तकलीफें आ जाती हैं यही जहन्नम है, कि उठना उठना कुछ चीज नहीं, कि मुसलमान कोई कहता है, तो फिर सोचे कुरान पे तुम्हारा क्या ईमान है। कुरान कह रहा है वाद अल्लाह ही हक्का, अल्लाह का ये वादा सच्चा है, इस पे यकीन कर लो, ये ऐसा हो के रहेगा। कैसे होगा ये? अब इंसान सोचता है ये कैसे हो सकता है, इंसान इतने दिन से मर रहे हैं, वो आज तक तो हमने उठे हुए नहीं देखा, कैसे ये हड्डियां ऐसी भुरभुरी हो गई हैं, मिट्टी हो गए हैं, कहां कैसे उठेंगे आज की। वैसे ये जो आपके कार्टून या इस तरह की चीजें हैं वो दिखाते हैं ना, ऐसे कोई चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है उसके बाद उसको दिखाते हैं उसके जर्रे ऐसे ऐसे खड़े हो गए और वो भी पूरा बन गया, दिखाते ना। अब इसे देखें कि इंसानों ने भी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर और इस तरह की चीजें दिखाना शुरू कर दी है, एनिमेशन से या जिस तरह से भी। तो अल्लाह ताला जिसके बारे में इंसान का मुंह से कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, क्या वो रब नहीं कर सकता? इन्नहु यबदाउल खल्का, तुम्हें समझ नहीं आती कि वो इब्तदा करने वाला है पैदाइश की, सुम्मा युईदुहु, फिर दोबारा लौटा देगा उसको, क्या मुश्किल है उसके लिए? उसने ही पैदाइश की इब्तदा की थी, पहली दफा बनाया किसने था? उसने, तो दूसरी दफा बनाना भला उसके लिए कैसे मुश्किल हो सकता है? खुद बताओ, पहली दफा कोई चीज बनाना आसान होता है या दूसरी दफा? उसके लिए तो हर वक्त ही आसान है, लेकिन इंसान खुद भी सोचे, पहली दफा कोई भी चीज बनाना इंसान के लिए, अल्लाह के लिए नहीं, इंसान के लिए पहली दफा कोई चीज बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सेकेंड टाइम हम कहते हैं हमने पिछली दफा भी बनाई थी तो ये इस तरह बनती है। तो बताओ कि वो रब जो कौन कह के करने वाला है उसके लिए कोई मुश्किल होगा दोबारा तुम्हें तखलीक करना, दोबारा तुम्हारे इरादा करना, वही चीज लौटा देना, वैसा ही तुम्हें बना देना, तुम्हारी तो वो उंगलियों की पोरों तक को ऐसा कर देगा कि ये जो फिंगरप्रिंट्स है ना बनाना, ये फिंगरप्रिंट्स ये भी वैसे के वैसे ही होंगे। सुभान अल्लाह, यानी तुम सोचते हो वो कैसे बनाएगा, ऐसे पैदा कर देगा वो तुम्हें, और ये उसको थकाता नहीं, ये उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। एक हदीस में आता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, उसे कोई खर्च कम नहीं करता, यानी कितना भी वो खर्च करे कम नहीं होता, दिन और रात वो खर्च करता रहता है। क्या तुम्हें मालूम है जब से जमीन व आसमान को उसने पैदा किया तब से कितना खर्च उसने कर दिया, ये सारे खर्च में उसने कोई कमी नहीं की, कितना कुछ खर्च किया। देखिए ना, अब आप हम एक घर बनाने लगते हैं कितना हमारा खर्चा हो जाता, सारी जिंदगी की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा कुछ इतना नहीं कर पाते, कहते हैं कि बस अब सरमाया खत्म हो गया, बस अब बाकी चीजें रहने दो। और अल्लाह ताला ने कितना कुछ इस कायनात में बनाया, कितना कुछ खर्च किया, जबकि उसके तो मटेरियल भी पहले नहीं थे, लेकिन कमी नहीं हुई, जो उसके हाथ में है उसमें कुछ कमी नहीं हुई। और उसका अर्श पानी पर था, और उसके दूसरे हाथ में तराजू है जिसको वो उठाता और झुकाता है, ये बुखारी की हदीस है। यानी ये वो रब है तो उसको क्या मुश्किल तुम्हें पैदा करना, और क्यों पैदा करेगा वो? लियजिल्लजीना आमनु व अमिलु सालिहाति बिलकिस्त, ताकि वो बदला दे दे उन लोगों को जो ईमान लाए और साले अमल किए इंसाफ के साथ। क्यों? क्या दुनिया में नहीं इंसाफ हो रहा था जो वो वहां पे इंसाफ करेगा उसको? नहीं, दुनिया में नहीं होता इंसाफ, क्योंकि दुनिया दारुल जजा नहीं है, यहाँ पे टू सम एक्सटेंट आपको आमाल की अच्छा किया तो थोड़ा बहुत हो सकता है मिल जाए, और हो सकता है कुछ भी ना मिले आपको उस भलाई का, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जब जो ईमान और साले अमल करने वाले होंगे उनकी कदरदानी की जाएगी, उनको नवाजा जाएगा, उनकी जो उन्होंने कुर्बानियां की, जो उन्होंने मुशक्कतें की अल्लाह के रास्ते में, जो उन्होंने इसार की अल्लाह के रास्ते में, उनको रिवॉर्ड किया जाएगा उसके ऊपर इंसाफ के साथ। यानी यहाँ पे तो देखें कई नेक अमल इंसान करता है और वो इग्नोर हो जाते हैं या लोगों को पता ही नहीं चलता या कोई उसका भी कदर ही नहीं करता। और बार दफा इंसान मिसाल के तौर पे आप सहाबा में देखें जिन्होंने जो शहीद हो गए मक्की दौर में टॉर्चर वगैरह से, उन्होंने क्या देखा? कुछ ने तो बाद में देखा, इस्लाम का उरूज भी देखा, बहुत वेल्थ भी देखी, लेकिन जो मक्की दौर में शहीद हो गए उन्होंने क्या देखा? उन्होंने तो सिर्फ कुर्बानी की थी, उनको क्या मिला? फिर इंसान चाहता है ना इंसाफ हो, तो अल्लाह ताला कहता है मैं कदरदानी करने वाला। तुम ये ना समझना कि साले अमल करके नेक अमल करके इतनी मुश्किलें हमने झेली और क्या मिला हमें, ये ना समझना। इसी दिन, इसी के लिए तो मैंने एक दिन रखा जिस दिन मैं तुम्हें इंसाफ के साथ दूंगा, ठीक है। और दूसरा भी एक माना है इसका, लियज़ी अल्लज़ीना आमनू, ताकि बदला दे उन लोगों को जो ईमान लाए, वो आमिलु सालिहात, अब जिन्होंने अमल किए, किस तरह अमल किए? बिलकिस्त, साथ इंसाफ के, यानी अमल के लिए बिलकिस्त आया। ये दूसरा माना, यानी आमाल किस तरह इंसाफ के साथ किए जाते हैं, जब उन आमाल के अंदर शिर्क नहीं होता। नेकियां की लेकिन शिर्क से अपनी नेकियों को बचा के रखा, कहीं शिर्क का की जरा सी भी आमेजिश नहीं आने दी, क्योंकि शिर्क क्या है? जुल्म अजीम है, और जुल्म का उलट क्या होता है? इंसाफ। तो इसलिए उन्होंने अपने सारे आमाल फिस्त के साथ किए हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला उनको बदला देने के लिए एक दिन कायम करेगा। अब देखें नेक आमाल यहाँ पे ईमान के साथ साथ हैं, तो नेक आमाल करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि नेक आमाल के रास्ते में कई चीजें रुकावट बन जाती हैं, और वो कौन सी चीजें? बीमारियां, बुढ़ापे या बिजाल का फितना, कयामत, मौत, ये सब चीजें हैं, या मसरूफियात भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि दो चीजें ऐसी जिनकी इंसान नहीं कदर करता, एक सेहत और एक फरागत। ये इंसान को जब बला की मुशक्कत आ जाती है या उसके ऊपर बीमारी आ जाती है, फिर वो रोता है कि हाय अगर मेरी सेहत के दिन होते तो मैं भी कोई नेकी कर लेता, तो ये खतरे हैं जो लाहक हो सकते हैं। इसलिए नेकियां जल्दी जल्दी कर लो, क्या पता कि कल को कोई अल्लाह ना करे कोई फकर आ जाए, क्या पता कल को कोई बीमारी आ जाए, क्या पता कल को कोई ऐसी मसरूफियत आ जाए। इसलिए कि देखें जिस मुसाफिर ने दूर जाना होता है ना वो जल्दी करता है। इब्ने उमर कहा करते थे जब शाम हो तो सुबह का इंतजार ना करो, जब सुबह हो तो शाम का इंतजार ना करो। अपनी सेहत के जमाने में, अपनी बीमारी के जमाने के लिए सामान इकट्ठा कर लो, और अपनी जिंदगी के दौरान अपनी मौत के लिए तैयारी कर लो। जो जिंदगी का वक्फा है ना बहुत छोटा है, इतनी नेकियां कमा लें कि अगर बीमारी आए जिसमें हम कुछ ना कर सके तो कमी पूरी हो जाए, क्योंकि कल का पता नहीं, कल हमारा नाम मुर्दों में हो तो या जिंदों में हो, तो पहले से कमाई करके रखो। सेहत में और फरागत को गनीमत जाने, और जिसकी जिंदगी का पता है कि ये जिंदगी पता नहीं कितनी है, पता नहीं कल क्या मेरा नाम किधर होगा, वो क्या अपना वक्त जाया करेगा? जिस मुसाफिर ने दूर जाना है और उसको पता है कि फासला बहुत है, वो कब से सफर स्टार्ट कर लेगा? वो शुरू रात से ही सफर शुरू कर देता है ना, वो कहता है कि मुझे बहुत दूर है फासला, इसलिए मैं अभी से सफर शुरू कर देता हूँ, वो इंतजार नहीं करता। फिर जिसको ये ना मैंने अभी बहुत कमाई करनी है, बहुत कुछ चाहिए मुझे आखिरत के लिए, वो शुरू से ही अपना यानी कोई टाइम वेस्ट किए बगैर अपना नेकियों का सफर शुरू कर देता है। वो इंतजार नहीं करता कि मैं फलानी मेरी शादी होगी तो फिर मैं करूंगी, या मैं फलानी जगह सेटल हो जाऊं तो फिर करूंगी, ये मेरी नेकी का काम मेरे जहन में तो है लेकिन अब मैं मूव करूंगी तो फिर करूंगी, ऐसे नहीं करते। इंतजार नहीं करना। वल्लदीना कफरू लहुम शराबुम मिन हमीम, ऐसे लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए पीना खोलते हुए पानी का, वह अजाबुन अलीम बिमा कानू यकफुरून, और दर्दनाक अजाब है। क्यों? इसलिए कि वो कुफर किया करते थे। खोलते हुए पानी का तो अजाब इस कदर सख्त है, यानी आप सोचें कि प्यास की इंतहा होगी। जाहिर है जहन्नुम के अंदर जो गर्मी है वहाँ की, तो सबसे ज्यादा गर्मी में इंसान भूख से ज्यादा भी प्यास महसूस करता है, अलग खुश होने लगता है। तो वो एंटरटेन किए जाएंगे पानी से, लेकिन वो कैसा पानी होगा? खौलता हुआ पानी, उनकी आंते गला देगा और उस सरों पे भी खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आप ये सोचें, सिर्फ अगर शावर में कभी बहुत तेज पानी हो और एकदम आप नीचे चले जाए, आपको पता नहीं हो तो इंसान की चीख निकल जाती, या नलके में पानी आ रहा हो और आपको पता नहीं था, एकदम खोलता हुआ पानी से आपने हाथ आगे किया तो एकदम जान निकल जाती। और कहां ये कैसा पानी खोलता हुआ पीना पड़े इंसान को। तो ये वो वहां पे अजाब होंगे जो बहुत दर्दनाक होंगे। इंसान को अगर अल्लाह ताला ना वहां पे कुव्वत दे तो उसको मौत आ जाए, लेकिन वहां पे मौत चूंकि नहीं है इसलिए मौत आएगी नहीं, वरना इनमें से कोई छोटे से छोटा अजाब भी जहन्नम का किसी को हो ना तो वो मर जाता। दुनिया में अगर होता तो मर जाता आग के अजाब से, खौलते हुए पानी के अजाब से इंसान की मौत वाकई हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला उस वक्त उसको वो ऐसा बना देगा कि मौत पुकारने पे भी मौत नहीं आएगी, मौत मांगेगा भी तो मौत नहीं आएगी। ये मौत भी कभी कभी ब्लेसिंग बन जाती है, लेकिन उनको इससे भी महरूम कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने अपनी और निशानियां बयान फरमाई। आपको बताया था ना, इसमें तज़कीर है इस सूरत में भी आला इल्ला, अल्लाह की जो नेमतें हैं उनके जरिए इंसान को याद दहानी कराई गई है कि तुम देखते नहीं उन नेमतों को, वो कौन है अल्लाह। ये जो पीछे से बात आ रही है ना, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी, तो वही बात चल रही है, वो कौन रब है। अगर इस सारी चीजों को आप एक एक करके एक लिस्ट बना ले, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल-अर्ज़ सित्तति अय्यामिन, फिर युदब्बिरुल अम्र, फिर मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादी इज़्निही, फिर इलैहि मर्जिउकुम जमीअन, फिर वो जो पैदा करने वाला है, वो अयादा करने वाला है, फिर उसके बाद वल्लज़ी जअलश्शम्स ज़ियान, सूरज को नहीं देखते, वो अल्लाह वो जात है जिसने इसको पैदा किया, जिसने इसको बनाया तुम्हारे लिए, दिया रोशनी रोशन, वो चीज जो दूसरी चीजों को रोशन करे और खुद भी रोशन हो ना, उसको कहते हैं दिया। ये तो आज इनको साइंस को पता चला कि ये जो सूरज है ये इसकी अपनी लाइट है, और ये इसकी लाइट जमीन तक जो आती है ये सूरज की लाइट आ रही है, और वल कमरा नूरन, और कमर को नूर बनाया, यानी उसके अंदर ठंडक है, और दूसरी उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसकी लाइट को नहीं दिया कहा गया। और ये भी है कि दिया वो वाली लाइट होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है, कमर होती है जो स्ट्रांग भी और वीक भी दोनों के लिए, लेकिन दिया वो जो बहुत हार्ड स्ट्रांग लाइट होती है। दोनों रोशनियों में भी फर्क है, और उनके लिए दो डिफरेंट वर्ड्स आए, और दोनों डिफरेंट वर्ड्स उनकी लाइट को बयान कर रहे हैं, कैसी एक ही रिफ्लेक्टेड लाइट है कमर की और दूसरे की अपनी है लाइट। सुभान अल्लाह। और ये भी युदब्बिरुल अम्र में आता है ना कि अल्लाह ताला ने इनका फासला तय किया, कितनी दूर होंगे ये जमीन से, और सूरज अगर इतने बैलेंस्ड डिस्टेंस में नहीं होता तो इसकी रोशनी से और इसकी हीट से ये जमीन ही जहन्नुम बन जानी थी। ये हमें एहसास दिलाया जा रहा है कि ये सब कुछ जो इतना एक्यूरेट तुम्हारे लिए चल रहा है वो बनाने वाला अल्लाह है। وَقَدَّرَهُ مَنَازِلًا, और मुकर्रर कर दी इसकी मंजिलें। इसमें قَدَّرَهُ जो है ये वाहिद की जमीर है, अब बाज ने इससे सिर्फ कमर लिया और बाज ने शम्स और कमर दोनों के लिए ये कहा है कि قَدَّرَهُ की जमीर दोनों के लिए आ रही है, बड़ा दफा वाहिद की जमीर आ भी जाती है दो चीजों के लिए भी। तो मुकर्रर कर दी उसकी मंजिलें, यानी कमर की, तो कमर की भी मंजिल मुकर्रर है, आपने देखे उसके रास्ते मुकर्रर हैं, उसका जो जो स्पीड है वो मुकर्रर है, वो उसने कहां पे कब तक पहुंचना है वो सब मुकर्रर अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये मनाजिल जो है, मंजिलें जो है, शम्स और कमर की जो स्पीड्स हैं, ये अल्लाह ताला ने तय की। ये चांद जो है वो अपना दौरा, अपना जो कंप्लीट साइकिल करता है, हर महीने में पूरा कर लेता है, इसलिए उसकी मंजिलें क्या है, 29 या 30, राइट, और एक आध दिन बीच में गायब भी हो जाता है। तो और सूरज, सूरज का दौरा, सूरज का जो ऑर्बिट है वो ये जमीन कितने दिन में पूरा करती है, एक साल में, तो उसकी मंजिलें कितनी हो गई, 365, ठीक है, इस तरह से हो गए। तो ये इनकी मंजिलें हैं, ये किसने तय की है, अल्लाह ताला ने। और फिर लिताला मु अदद सीनीन, किस लिए ये तय कर दी मंजिलें, इनको फिक्स कर दिया, कितनी बड़े मैसेज है ये, कितनी बड़ी बॉडीज है ये, सूरज और चांद कितने बड़े हैं, और उनको अल्लाह ने जकड़ दिया एक निजाम के अंदर, एक सिस्टम में, जैसे जकड़े में मजाल है कि इधर से उधर हो जाए। हैरान नहीं होते आप कभी कि ये देखो, इन कोई मजाल नहीं है कि सूरज भी वेकेशन पे चला जाए, उसको नहीं वेकेशन चाहिए, चांद भी जरा रुक जाए, सब चल रहे हैं। ये किस लिए अल्लाह ताला ने इनकी मंजिलें मुकर्रर कर दी, ताकि तुम जान लो गिनती सालों की, वल हिसाब, और हिसाब। लेकिन सूरज के जरिए हमें हिसाब पता चल रहा है दिन का, अब दिन के 10 बजे हैं, अब दोपहर हो गई है, अब शाम हो गई, अब रात, ये किससे पता चल रहा है, ये सूरज से पता चल रहा है कि फजर का टाइम कौन सा, जोहर का टाइम। हमने तो ये सोच लिया ना कि बस सूरज जो है वो उसको, उसकी डेट्स को फॉलो करना बिल्कुल गलत है, उसको जानना बिल्कुल गलत है, उससे हिसाब लेना बिल्कुल गलत है, इसका तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सूरज और चांद दोनों अल्लाह ताला की मखलूकात है, दोनों हिसाब के लिए इस्तेमाल होती है। मगर हमारी दीन में क्योंकि हर एक इंसान के लिए रायत रखी गई, देखिए अगर सूरज को कहा जाता कि इसके मुताबिक अपनी चीजें करो, तो लोग देख के सूरज को नहीं ये बता सकते थे कि ये कौन सी डेट चल रही है, कौन सा महीना चल रहा है। ये चांद को देख के बताया जा सकता है कौन सी डेट चल रही है, चांद को देख के आपको पता चल जाता है कि ये शुरू के दिन है, मिड आ गया महीने का, एंड हो रहा है महीने का। कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ शहरी हो देहाती हो, हर एक जान सकता है। तो अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक हमारे रोजे, हज वगैरह, जकात वगैरह, इद्दत वगैरह, ये सब इस्लामी जो फराइज और अहकाम है हमारी हिसाब से रखे। बाज औरतों को ये नहीं पता होता कि इद्दत का जो है ना वो भी कैलकुलेशन अमरी लिहाज से करनी होती है, वो जनवरी फरवरी के मुताबिक करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि सूरज का हिसाब रखना, इस्तेमाल करना हराम है, नाजायज है, वो क्रिश्चियन का, सूरज क्रिश्चियन का और चांद मुसलमानों का, ये किसने तकसीम कर दी। सूरज के जरिए हम क्या अपनी नमाजों के औकात की नहीं देखते, वो चांद से तो नहीं देखते हम। लेकिन हाँ, चूंकि हमारी सारी इबादत रिलेटेड ये अमरी कैलेंडर से, इसलिए हमें उसको याद भी करना चाहिए, उसके महीनों को उसको जानना भी चाहिए, ताकि उसके मुताबिक फिर हम अपनी कैलकुलेशन कर सकें। तो अल्लाह ताला ने रोशनी के ये दो अजीम शान खजाने हमारे लिए पैदा किए, और देखें सुभान अल्लाह, जो इन दोनों की एक दुया है और एक नूर है, एक में सॉफ्टनेस है की लाइट में, एक ही लाइट हार्ड है। अब दिन के लिए ये तेज लाइट चाहिए, अगर कम होती तो हम अपने काम ना कर सकते। रात के लिए डिम लाइट चाहिए, अगर रात के वक्त इतनी तेज हो जाती तो हम सो ही ना सकते। सुभान अल्लाह, उसी तरह उनकी लाइट्स भी बनाई, उसकी इतनी सॉफ्ट है कि आप रात को आराम से सो सकते, चाहे फुल मून हो, उसमें कितनी ठंडक है, और दिन के वक्त ऐसी है कि तेज है। और देखें ना, इनकी आगे पीछे कोई हिसाब किताब होता है कि कभी जल्दी आ जाए चांद, कभी देर से आ जाए, अब ये 3-4 तारीख पे ही फुल मून हो जाए, ऐसा नहीं होता। ना कभी इनकी स्पीड में वो फर्क आता है, ना कभी आगे पीछे होते हैं, ना आपने कभी देखा होगा कि इनकी कोई इनको फिक्स कर रहा है, कोई इनकी मुरम्मत कर रहा है, ना उनको कोई ग्रीसिंग की जरूरत है, ना कोई घिसती है कोई चीज इनमें, ना कोई चीज टूटती है इनमें, कौन इनको चला रहा है, सोचते नहीं हो कि कोई रब है जो सारा निजाम चला रहा है, जिसने सबको थामा हुआ है। सुभान अल्लाह, मा खलक अल्लाह ज़ालिका इल्ला बिल हक, نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پرپس کے ساتھ، مقصد کے ساتھ. ایسے ہی پیدا کر دیا کہ بھئی کوئی کھیل تماشے کے طور پہ نہیں پیدا کیا. کافر یہ تو مانتے تھے کہ اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمین بنائی، مگر یہ نہیں مانتے تھے کہ اس کو چلانے والا اس کا رب اللہ. الہ مان لیتے تھے، رب نہیں مانتے تھے. فرمایا یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ بیان کرتا ہے تفصیل کے ساتھ. جو ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہے ہیں آیتوں کو؟ اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو، یا اس کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہے، ان کے لیے اس میں دلائل ہیں. جو کچھ سمجھنا چاہے ان کے لیے دلائل ہیں. علم کون سا؟ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، یہ پتہ چلتا ہے جو علم رکھتی ہو. جو علم رکھتی ہو کس کا؟ اس کے لیے اس میں آیات ہیں. کس کا علم رکھتی ہو؟ یعنی سورج چاند اور ان چیزوں کا علم رکھتی ہو، ان کے لیے اس میں نشانیاں کہ وہ ان کو دیکھ کے اللہ کو پہچانے. جو جتنا زیادہ اس کو گہرائی میں دیکھے گا، اتنا ہی زیادہ اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ یہ تو ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں پہ علم کیا ہے؟ کون سا؟ جیسے سائنس کا علم ہے. مگر پھر بھی جب تک اس کے پیچھے قرآن کا، دین کا، اس کا علم نہ ہو، تو پھر تو کئی سائنس کی کتابیں لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں، ان کو ان سورج چاند ستاروں ان کو دیکھ کے بھی کوئی اللہ نہیں یاد آتا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم والا اصل میں وہی ہے جو اللہ کو پہچانتا، باقی سب بے علم ہے، جاہل ہے. جس نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، وہ تو جاہل ہی ہوا نا، چاہے جتنی بھی ڈگریاں رکھ لے. تو ان کے لیے دلائل اس میں کیا ہے؟ کیا دلائل ملتے ہیں آپ کو؟ کیا نظر آتا ہے کہ اس میں کیا نشانیاں، کیا دلیلیں ہیں؟ توحید کے تو دلائل ہیں نا، کہ اس میں دیکھیں کوئی اور اللہ کا ہیلپر نہیں ہے. وہ لوگ سوچتے تھے کہ اللہ کا نعوذ باللہ، وہ تو خود خدا ہے، اس نے تو بنایا، لیکن چلانے کے لیے اس نظام کو اس کے ہیلپر ہیں. اور یہ ہمارے دیوی دیوتائیں، یہ ہمارے بت جو ہے نا، اللہ کے ہیلپر ہیں. ایک تو یہ چیز ختم کرتی تھی، توحید پتہ چلتی. اسی طرح ہمارے ہاں بعض کانسیپٹ ہیں کہ کتب اور ابدال اور فلانا اور یہ اور وہ، فلاں پانی کے اوپر مقرر ہیں، اور فلاں ولی اللہ جو ہے وہ ہواؤں کے اوپر مقرر ہیں، اور وہ یہ چلاتے ہیں. نہیں، اللہ کو کسی کی بھی امداد کی ضرورت نہیں. پھر اس میں آخرت کے بھی دلائل ہیں. کیسے ہیں اس میں آخرت کے دلائل؟ کہ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا، اور بڑی اتنا ان کو پابند کیا ہوا. تو ظاہر ہے یہ بے فائدہ تو نہیں ہے، ساری چیزیں کسی انسان کو فائدے کے لیے ہی ہیں نا. تو جس کے فائدے کے لیے اللہ نے اتنا کچھ بنایا، ظاہر ہے اس کے اوپر بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہوں گی، کوئی فرائض ہوں گے، کوئی پابندیاں ہوں گی. تو جب کسی کے اوپر کوئی ریسپانسبلٹی دی جاتی ہے، تو اس کا پوچھا جاتا ہے نا بعد میں. آپ اپنے نوکر کو کوئی کام دیں کہ یہ کام کرنا، اس کے بعد پوچھیں گی نا کیا کہ نہیں کیا. انسان کے وہ ریسپانسیبل بنایا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے ریسپانسیبلٹی پوری کی یا نہیں کی؟ جو پھر کر کے آئے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو نہیں کر کے آئے گا اس کو سزا ملے گی. اسی کا نام قیامت ہے. یہ آیات قیامت کے کانسیپٹ کے لیے بھی دلیل ہے، اور توحید کے لیے بھی. اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک اختلاف میں رات اور دن کے. اختلاف ہے نا، ایک روشن ہے اور ایک اندھیرا ہے، تو بالکل اپوزٹ ہے. جب سورج چاند کی بات آئی تو ساتھ ہی دن اور رات کی بھی بات آ گئی، اسی سے بنتے ہیں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اور جو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، سب میں نشانیاں ہیں. لیکن کن کے لیے؟ اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں. دیکھیں، ایک بندہ ہے وہ صرف نالج لینا چاہتا ہے نا، تو وہ پورا قرآن بھی پڑھ لیتا اور پھر پروفیسر لگ جاتے ہیں یہاں پہ یونیورسٹیز میں. ہیں وہ غیر مسلم، ان کو تو ایمان تک نہیں ملا، اسلام تک نہیں ملا اس قرآن کو پڑھنے کے بعد. کیوں ان کو کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ اس میں، اس پوری کائنات میں یا قرآن کی آیات میں उनके लिए ही निशानियां हैं, उनके लिए ही साइंस हैं, जो वाकई आखिरत के अजाब से बचना चाहते हैं। तो कहता ना मैंने बचना है, उसको इसमें निशानियां भी नजर आएंगी। और जो बचना नहीं चाहता, जो इसको इस तसव्वुर के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं आता, वो तो फिर बस रीडिंग करता है इस किताब की भी एज अ रीडिंग बुक, और वो आसमान और जमीन को भी देखता है, इनकी स्टडीज भी करता है। कोई जियोलॉजिस्ट है, कोई किसी कोई साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमी में माहिर है, कोई गैलेक्सीज का इल्म रखता है, कोई कुछ और कीड़े मकौड़ों को जानता है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, कितनी चीजें पढ़ पढ़ के उनके मास्टर्स कर करके भी कुछ भी नहीं हासिल किया। अल्लाह को नहीं पहचाना, इसलिए कि बचना नहीं चाहते थे। मुत्तकी जो होगा ना, मुत्तकी जो बचना चाहता है, वो फिर ये कॉन्सेप्ट लेकर आएगा, इन सारी चीजों को इस तरह से देखेगा कि मैंने अपने आप को बचाना है अल्लाह की नाराजगी से, उससे मुलाकात के लिए एक दिन आने वाला है। अगर किसी को नाराज किया हो हमने, तो उसके घर जाना कैसा लगता है? डर लगता है ना कि जब उसके पास जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। फिर जब तुम्हें ये पता है कि इलैही मर्जियुकुम जमीअन, तुम सब के सबको उसकी तरफ लौटना है, और उसको हमने नाराज किया हो, तो फिर तो डर ही लगेगा ना, खुशी तो नहीं होगी। जो अपने आप को यहाँ पे बचा बचा के रखता है और रखना चाहता है, उसको फिर निशानियां भी नजर आ जाती हैं, उसको दिन और रात के फेर में ही बहुत कुछ पैगाम मिल जाता है, वो इसी से अपने अल्लाह को जान लेता है।